अय्यूब अध्याय 30। अध्याय 30 में वो अपनी वर्तमान स्थिति की चर्चा करता है। उसका अतीत जितना अधिक महिमामय था, वर्तमान उतना ही अधिक अंधकारपूर्ण हो गया है। अध्याय 30 पद 1 से लेकर 6 तक। परंतु अब जिनकी अवस्था मुझसे कम है, वे मेरी हंसी करते हैं। वे जिनके पिताओं को मैं अपनी भेड़ बकरियों के कुत्तों के काम के योग्य भी न जानता था, उनके बुझ बल से मुझे क्या लाभ हो सकता है? उनका पौरुष तो जाता रहा, वे दरिद्रता और काल के मारे दुबले पड़े हुए हैं। वे अंधेरे और सुनसान स्थानों में सूखी धूल फांकते हैं। वे झाड़ी के आसपास का लोनिया साग तोड़ लेते और झाऊं की जड़ें खाते हैं। वे मनुष्यों के बीच में से निकाले जाते हैं। उनके पीछे ऐसी पुकार होती है जैसी चोर के पीछे। डरावने नालों में, भूमि के बिलों में और चट्टानों में उन्हें रहना पड़ता है। ये लोग पृथ्वी पर कूड़ा स्वरूप है। अध्याय 30 पद 7 से लेकर 10 तक। वे झाड़ियों के बीच रेंगते और बिच्छू पौधों के नीचे इकट्ठे पड़े रहते हैं। वे मूढ़ों और नीच लोगों के वंश है जो मार मार के इस देश से निकाले गए थे। ऐसे ही लोग अब मुझ पर लगते गीत गाते और मुझ पर ताना मारते हैं। मुझे तुच्छ समझते हैं। वे मुझसे घिन खाकर दूर रहते, वो मेरे मुंह पर थूकने से भी नहीं डरते। इस देश में थूकना अपमानजनक बात होती थी। यदि आप वहां के पुराने नगरों से गुजरे तो पाएंगे कि उन लोगों की आंखों में घृणा भरी हुई है। जब आप उनके पास से निकलेंगे तब वे थूकते हैं, कभी कभी तो वे आपके ऊपर भी थूक देते हैं। ये उनकी घृणा का प्रतीक होता है। थूकने का अर्थ उनके लिए है कि उन्होंने आपका अधिक से अधिक अपमान कर दिया। हमारा एक मित्र है जो ओकिनावा में मिशनरी सेवकाई के लिए गया। वहां लोगों में अमेरिका विरोधी भावना है। उसके पुत्र को वहां स्कूल में डाला गया। जब वो लड़का स्कूल से लौटकर घर आता तो उसे प्रतिदिन नहलाना पड़ता, क्योंकि उसके साथ के बच्चे उस पर थूक कर अपनी घृणा प्रकट करते थे। उसका पिता बहुत निराश हुआ और वहां से लौट आने का विचार बनाने लगा। परंतु इस लड़के ने कहा, नहीं पिताजी, मैं मसीह यीशु के लिए ये सहन कर रहा हूं। और उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु उसके प्रेम को समझने में उनकी सहायता करे। हो सकता है कि मैं उन्हें मसीह का प्रेम दिखा सकूं। उस मिशनरी ने कहा कि बच्चे को पूरा थूक से सना देकर बड़ा दुख होता है। अय्यूब इस प्रकार के अपमान की चर्चा करता है, परंतु वास्तव में उनका थूकना केवल थूक फेंकना ही नहीं होता है, उनका थूकने का कारण गला साफ करना होता है। अध्याय 30 पद 11। परमेश्वर ने जो मेरी रस्सी खोलकर मुझे दुख दिया है, वो कहता है कि परमेश्वर ने उसे ये दुख दिया है। अध्याय 30 पद 11 और 12। इसलिए वे मेरे सामने मुंह में लगाम नहीं रखते, मेरे दहनी आलंग पर बाजारू लोग उठ खड़े होते हैं। ये सड़क छाप बच्चों के काम है। अध्याय 30 पद 12 में आगे लिखा है, वे मेरे पाँव सरका देते हैं। दूसरे शब्दों में वे पैर अड़ाकर मुझे चलते चलते गिरा देते हैं। अध्याय 30 पद 12 से लेकर 31 तक। और मेरे नाश के लिए अपने उपाय बांधते हैं। जिनके कोई सहायक नहीं, वे भी मेरे रास्तों को बिगाड़ते और मेरी विपत्ति को बढ़ाते हैं। मानो बड़े नाके से घुसकर वे आ पड़ते हैं और उजाड़ के बीच में होकर मुझ पर धावा करते हैं। मुझ में घबराहट छा गई है और मेरा रईसपन मानो वायु से उड़ाया गया है, और मेरा कुशल बादल की नाई जाता रहा, और अब मैं शोक सागर में डूबा जाता हूं। दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है। रात को मेरी हड्डियां मेरे अंदर छिद जाती है और मेरी नसों में चैन नहीं पड़ती। मेरी बीमारी की बहुतायत से मेरे वस्त्र का रूप बदल गया है, वो मेरे कुर्ते के गले की नाई मुझसे लिपटी हुई है। उसने मुझको कीचड़ में फेंक दिया है और मैं मिट्टी और राख के तुल्य हो गया हूं। मैं तेरी दुहाई देता हूं परंतु तू नहीं सुनता। मैं खड़ा होता हूं परंतु तू मेरी ओर घूरने लगता है। तू बदलकर मुझ पर कठोर हो गया है और अपने बलि हाथ से मुझे सताता है। तू मुझे वायु पर सवार करके उड़ाता है और आंधी के पानी में मुझे गला देता है। हां, मुझे निश्चय है कि तू मुझे मृत्यु के वश में कर देगा और उस घर में पहुंचाएगा जो सब जीवित प्राणियों के लिए ठहराया गया है। तो भी क्या कोई गिरते समय हाथ ना बढ़ाएगा और क्या कोई विपत्ति के समय दुहाई ना देगा? क्या मैं उसके लिए रोता नहीं था जिसके दुर्दिन आते थे, और क्या दरिद्र जन के कारण मैं प्राण में दुखित न होता था? जब मैं कुशल का मार्ग जोता था तब विपत्ति आ पड़ी, और जब मैं उजाले का आसरा लगाया था तब अंधकार छा गया। मेरी अंतड़ियां निरंतर उबलती रहती हैं और आराम नहीं पाती। मेरे दुख के दिन आ गए हैं। मैं शोक का पहरावा पहने हुए मानो बिना सूर्य की गर्मी के काला हो गया हूं, और सभा में खड़ा होकर सहायता के लिए दुहाई देता हूं। मैं गीदड़ों का भाई और शतुर मुर्गों का संगी हो गया हूं। मेरा चमड़ा काला होकर मुझ पर से गिरता जाता है और तप के मारे मेरी हड्डियां जल गई है। इस कारण मेरी वीणा से विलाप और मेरी बांसुरी से रोने की ध्वनि निकलती है। ओह, देखिए आयुब की दशा कैसी दयनीय और दुखद है। वो सर्वोच्च सम्मान से कैसे नीचे गिरा था। अध्याय 38 में अंततः प्रकाश की किरण लौट आती है। ओह, आनंदित हो, हम इस अंधकार से बाहर निकलने जा रहे हैं। परंतु कितनी देर में? कभी कभी हम भी कटु अनुभवों से गुजरते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम अब कभी उभर नहीं पाएंगे। कहा जाता है कि समय बलवान होता है। यदि आपका समय आनंद का है तो कुछ घंटों का समय पता ही नहीं चलता है। दूसरी ओर यदि आप कष्ट में हैं तो एक पल एक युग का सा प्रतीत होता है। यही समय का बल है। आयुब को अपने कष्ट अनंतकालीन प्रतीत होते हैं। हम भी जब परीक्षाओं और परख से गुजरते हैं तो हमें समय लंबा लगता है। हम परमेश्वर से प्रश्न पूछते हैं, क्यों प्रभु? यदि हम में आयुब के तुल्य आधारभूत सत्य नहीं है तो हम निश्चय ही ठोकर खाकर गिर जाएंगे। इस प्रकार आयुब की पुस्तक जिस तथ्य को उभार कर हमारे मन में उपस्थित करना चाहती है वो है कि हमारे मन मस्तिष्क में ये आधारभूत सत्य स्थापित हो जाए कि परमेश्वर भला है, धर्मी है, मुझसे प्रेम रखता है। ये तो मैं जानता हूं, परंतु जो बात मैं नहीं जानता वो ये है कि यदि परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है तो वो क्यों मेरे साथ अप्रिय घटनाएं घटने देता है? वो क्यों दुख, क्लेश और परेशानियों को मुझ तक आने देता है? मुझे तो केवल इस सच्चाई के कारण ही संतुष्ट रहना चाहिए कि वो मुझसे प्रेम रखता है, और यदि मुझ पर कोई बुराई आएगी तो वो उसके प्रेम से छन कर आएगी। परमेश्वर मेरा मार्ग जानता है। जब मेरी परख हो जाएगी तब मैं सोने समान निखर जाऊंगा। हे पिता, हम तेरे प्रेम और तेरी भलाई के लिए तेरे आभारी हैं। हमारे साथ धीरजवंत हो हे पिता, क्योंकि हम वो खोज रहे हैं जो हम खोज नहीं सकते, अर्थात तेरे मार्ग, तेरे उद्देश्य, तेरा व्यवहार आदि। प्रभु, हम तेरे प्रेम में आचरण करें और तेरा आत्मा हमारे विश्वास को उन्नत करे। यीशु के नाम में आमीन।